हेडिंग कालिदास का शास्त्रीय ज्ञान। महाकवि कालिदास की रचनाओं के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि उन्हें संस्कृत साहित्य के मौलिक ग्रंथों का पर्याप्त ज्ञान था। उनकी कृतियों में यत्र तत्र प्रसंगवश उपनिषद, पुराण, महाभारत, दर्शन, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य शास्त्र आदि के सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लेख उपलब्ध होते हैं। महाकाव्य रघुवंश के मंगलाचरण में श्लोक वागर्थाविव संप्रिक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ, हिंदी। इसमें उन्होंने काव्य का लक्षण शब्दार्थों काव्यम निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार वे अपने व्याकरण ज्ञान की प्रौढ़ता को भी व्यक्त करते चलते हैं। वागर्था वेव इस अंश में इवेन सह समासो विभक्ति लोपश्च इस वार्तिक का तथा पितरौ में पिता मात्रा इस पाणिनि सूत्र का स्मरण दिलाते हुए वे अपनी व्याकरण विदग्धता को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार 15वें सर्ग में बालीवत के प्रसंग पर व्याकरण में उपमा की हृदयाकर्षक छटा दिखाते हैं। सूत्र स हत्वा बालिनम वीरस्तत्पदे चिरकांगिक्षते धातोः स्थान इवादेशम सुग्रीवम सन्नेय वेशयत, हिंदी। अर्थात उस राम ने बाली को मारकर धातु के स्थान पर आदेश के समान अर्थात अश धातु के स्थान पर अस्तेर भू इस सूत्र से विहित भू आदेश के समान तथा पा धातु से पाघ्राध्मा सूत्र से विहित आदेश के समान सुग्रीव को चिरकाल से अभिलषित उस बलि के स्थान पर रखा। रघुवंश के तृतीय सर्ग में उनका ज्योतिष विषयक परिपक्व ज्ञान परिलक्षित होता है। श्लोक ग्रहस्ततः पंचभिरुच संश्रय सूर्यगे सुचित भाग्य संपदम असूत पुत्रम समये शची समा त्रिसाधना शक्ति रिवार्थमक्षयम्, हिंदी। अर्थात अनंतर इंद्राणी के समान रानी सुदक्षिणा ने प्रसव का समय होने पर उच्च स्थान में स्थित सूर्य के सानिध्य से अस्त को नहीं प्राप्त हुए पांच ग्रहों के द्वारा जिसकी भाग्य संपत्ति सूचित हो रही है ऐसे पुत्र को प्रभाव उत्साह एवं मंत्र इन तीन उपायों से संपन्न होने वाली शक्ति जैसे अक्षय अर्थ को उत्पन्न करती है वैसे ही उत्पन्न किया। शकुंतला के पंचम अंक में रानी हंस पदिका के सस्वर गीत को सुनकर राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अहो राग परिवाहिणी गीति ही। रघुवंश के प्रथम सर्ग में रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप को अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते समय कवि ने अपनी संगीत विदग्धता का परिचय देते हुए कहा है। श्लोक मनोभिरामा श्रृणवंतो रथने मिस्वनोन्मुखे षडजन संवादिनी केका द्विधा भिन्ना शिखंडिभि। अर्थात रथ के चक्र प्राप्ति के शब्द को सुनकर ऊपर मुख किए हुए मयूरों द्वारा दो प्रकार की हुई षडज स्वर का अनुसरण करने वाली तथा मन को प्रसन्न करने वाली वाणी को सुनते हुए वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप चले। कुमार संभव के द्वितीय सर्ग में ब्रह्म और जगत की एकात्मता ब्रह्म की जगत रूप कार्य के रूप में परिणत आदि बातें बड़ी चारुता के साथ काव्यात्मक सरल शैली में वर्णित की गई है। जैसे श्लोक नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक सृष्टे केवलात्मने गुणत्रय विभागाय पश्चात भेदमुपेयेषु। अर्थात हे भगवान संसार को रचने के पहले एक ही रूप में रहने वाले पर जब संसार रचने लगते थे उस समय सत्व रज एवं तम तीन गुण उत्पन्न करके ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से तीन रूप के बन जाने वाले आपको प्रणाम है। इसी प्रकार रघुवंश के प्रथम सर्ग में श्लोक वैवश्वतो मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम आसीन महीक्षिकता माध्य प्रणवश्च छंद सामिव प्रथम सर्ग 11वां श्लोक आदि श्लोकों से वे यज्ञ आदि कर्म कलाप के ज्ञान के साथ ही वेदोच्चारण विधि का प्रचार भी सूचित करते हैं तथा उनकी कृतियों में नीतिशास्त्र अर्थशास्त्र तथा पुराणों की प्रधान बातें यथा अवसर व्यक्त होती रहती हैं। रघुवंश में रघु और इंद्र के साथ युद्ध से तथा अभिज्ञान शाकुंतल के सप्तम अंक में विदूषक पर आक्रमण के समय दुष्यंत के शब्द वेधी बाण चलाने की कला से कविवर कालिदास के युद्ध विषय ज्ञान की सूचना मिलती है तथा शकुंतला के षष्ठ अंक में तुलिका से दुष्यंत द्वारा चित्रित शकुंतला विषयक चित्रकला और मूर्तिकला अनुशीलन करने पर कालिदास की चित्रकला का पर्याप्त ज्ञान प्रतीत होता है। इस प्रकार रघुवंश, कुमार संभव, शकुंतला आदि में विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान के पर्याप्त उदाहरण भरे पड़े हैं। हेडिंग्स: संस्कृत नाटकों के उद्भव तथा विशेषता का विवेचन। संस्कृत साहित्य में नाटकों की एक विशिष्ट परंपरा रही है। लोकप्रियता के कारण भारत में नाट्य कला का प्रयोग अत्यंत प्राचीन काल से होता चला आया है। ऋग्वेद के सूक्तों में सोम विक्रय के समय मनोरंजनात्मक अभिनय का संकेत प्राप्त होता है। पुरवा उर्वशी, यम यमी, इंद्र इंद्राणी, वृषाकपि आदि के संवाद सूक्तों में नाटकीय कथनोपकथन उपलब्ध होते हैं। यजुर्वेद में शैलु शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, जो नट अथवा अभिनेता का समानार्थी है। वाल्मीकि रामायण में नट, नर्तक तथा शैलु शब्दों का उल्लेख है। इस प्रकार तत्कालीन जनजीवन में धार्मिक अवसर, संगीत समारोह तथा नृत्योत्सवों से नाटक का विशेष संबंध था। उत्तरवर्ती साहित्य में नाट्य कला की शिल्प विधियों का पूरा इतिहास दिखाई देता है। रामायण के एक प्रसंग में कहा गया कि नटों, नर्तकों और गायकों की मंडलियों की कर्ण सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी। श्लोक: नट नर्तक संघानाम गायका नाम च गायताम यतः कर्ण सुखावाच सुश्राव जनता सतः। हिंदी: महाभारत में नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि का निर्देश है। हरिवंश पुराण में रामचरित नाटक प्रदर्शित किए जाने का संकेत है। महाभारत के अनुसार पद्युम्न विवाह के प्रसंग में वसुदेव जी के यज्ञ के अवसर पर भद्र नामक नट ने अपने आकर्षक नाट्य प्रदर्शन से उपस्थित ऋषि महर्षियों को प्रसन्न किया था, जिसके फलस्वरूप उसने आकाश विचरण तथा स्वेच्छया रूप धारण करने का वरदान प्राप्त किया था। महर्षि पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में शिलाली तथा कृशास्त्र के द्वारा रचित नाट्य सूत्रों का उल्लेख किया है। भगवान पतंजलि ने अपने महाभाष्य में कंसवध तथा बलिवध नामक नाटकों के अभिनय का वर्णन किया है। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में नागरिकों के मनोवर्णन करते हुए नटों के द्वारा अभिनीत नाटकों के प्रदर्शन का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि ललित कला की शिक्षा के लिए उस समय राज की ओर से पूर्ण प्रबंध था। इन बातों से प्रमाणित होता है कि वैदिक काल से ईसा की प्रथम शताब्दी तक हमारे देश में नाटकों का अभिनय क्रमशः चला आ रहा था। इसलिए यह निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत साहित्य में नाटकों के निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और आदिकाल से ही भारतीय जनजीवन के मनोरंजन के लिए नाटकों के श्रेष्ठ माध्यम के रूप में अपनाया जाता था। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में जो नाटकी कला की उत्पत्ति का निवारण उपस्थित किया है, उनके अनुसार इंद्रादि देवताओं के अनुरोध पर स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से गान और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद नामक पंचम वेद की रचना की तथा धर्म, क्रीड़ा, हास्य, युद्ध आदि भावों का प्रदर्शन इसका विषय कहकर इसे देवता और दैत्य दोनों के लिए ग्राह्य बताया और नाट्यशास्त्र में अभिनय के लिए वर्ग, आयत या त्रिभुज के आकार वाले प्रेक्षागृहों के निर्माण की नियम विधि का उल्लेख किया है। इस प्रकार नाट्यशाला का मूल संबंध धर्म से था। आगे चलकर इसने स्वतंत्र साहित्यिक रूप धारण कर लिया। संस्कृत के नाटककारों ने अपने नाटकों की कथा वस्तु धर्म ग्रंथों से लेकर जनता की रुचि में ढालकर देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार जनरंजन की दृष्टि से नाटकों की योजना की। भरत मुनि के मतानुसार नाट्य तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। त्रैलोक्यस्य सर्वस्य नाट्यम भावानुकीर्तनम। भरत मुनि का सिद्धांत है कि नाटक में सभी प्रकार का ज्ञान, शिल्प, विद्याएं और शास्त्र समन्वित रहते हैं। यह वेद विद्या है, इतिहास है और उसमें योग, सदाचार एवं समाज को विनोद प्राप्त करने के साधन विद्यमान हैं। इस मत का अनुमोदन महाभाष के कंसवध और बालीवध के अभिनय के वर्णन में किया गया है। श्लोक: न तज्ज ज्ञानम न तच्छल्पम न सा विद्या न स कला न स योगो न तत्कर्म नाट्य अस्मिन् यन्न दृश्यते। 1.106 हिंदी: पाश्चात्य विद्वानों ने इस परंपरानुमोदित मान्यता को अस्वीकार करते हुए अन्याय मूल कारणों की उद्भावना की। डॉक्टर कीथ के अनुसार प्राकृतिक परिवर्तनों को जनसाधारण के सामने मूर्त रूप दिखाने की अभिलाषा से ही नाटकों का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मनी के विद्वान पिशेल ने नाटकों की उत्पत्ति पुतलिका नृत्य से बताई है। उसके कथनानुसार उस नृत्य की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई और यहाँ से इसका प्रचार एवं प्रसार अन्य देशों में हुआ। सूत्रधार एवं संस्थापक जैसे शब्दों से इस मत की पुष्टि की गई है। डॉक्टर लूडर्स के मत से नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों से हुई है। इसका समर्थन दूतांगद नाम छाया नाटक से किया गया। नेपाल आदि देशों में प्रचलित इंद्रध्वज महोत्सव से नाटकों की उत्पत्ति मानी। अनेकों ने संवाद सूत्रों से नाट्य का उद्गम प्रतिपादित किया है। वस्तुतः संस्कृत नाटक भारतीय प्रतिभा की स्वतंत्र सूझ है और अभिनय की कला में भी वह स्वतंत्र उद्भावना के आश्रित रहा है। संस्कृत के प्राचीन नाटकों के रंगमंच पर बालकों के द्वारा नियोजित किए जाने के उदाहरण उपलब्ध हैं, जैसे शकुंतला का सर्वदमन शेर के बच्चे से खेलते हुए दिखाया गया है। संस्कृत नाटकों में विभिन्न पात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाओं का उपयोग है। नायक तथा प्रमुख पात्र संस्कृत बोलते हैं, लेकिन स्त्रियां एवं निम्न कोटि के पात्र प्राकृत के भिन्न भिन्न रूपों का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विश्व के किसी अन्य नाटक परंपरा में प्राप्त नहीं होती। समीक्षकों ने महाकाव्यों के अनंतर संस्कृत नाटकों का प्रादुर्भाव भास कवि के स्वप्न वासव दत्तम तथा प्रतिज्ञा यौगंध नारायण नामक नाटकों से माना है, जिनके कथानक रामायण और महाभारत से लिए गए हैं। नाटकों की निर्माण परंपरा में भास कवि के अनंतर कालिदास का नाम आता है। कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास, सौमिल, कविपुत्र आदि प्रागवर्ती नाटककारों की रचना की है। संस्कृत साहित्य के उपवन में कालिदास का आगमन एक वसंत दूत के रूप में माना गया है, जिसके कारण उपवन का कोना कोना पुष्पित हो उठा है। इन्होंने नई साज सज्जाएं, नई दिशाएं, नए विचार, अभिनव भाव, नई नई पद्धतियां प्रस्तुत की हैं। ये संस्कृत के सबसे बड़े कवि और सर्वश्रेष्ठ नाटककार हुए हैं। नाटकों के क्षेत्र में कालिदास ने 3 नाटकों का प्रलयन किया है, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतल। इनमें मालविकाग्निमित्र कवि की आरंभिक कृति है, जिसमें नाटक नियमों की दृष्टि से कथा निर्वाह, घटनाक्रम, पात्र योजना आदि सभी नाटककार के असाधारण कौशल की छाप है। अभिज्ञान शाकुंतल उनकी अंतिम कृति है, किंतु उसकी गणना आज विश्व साहित्य की पहली कृति के रूप में की जाती है। प्रेम और सौंदर्य का ऐसा रस, हृदयग्राही एवं गर्भ स्पर्शी चित्रण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। उसमें ओज के साथ मनोज्ञता और लघुत्व के साथ प्रांजलता का अद्भुत समन्वय है। शकुंतला की सरलता अपराध में, दुख में, अज्ञानता में, धैर्य में और क्षमा में परिपक्व है, गंभीर है तथा स्थायी है। गेटे की आलोचना के अनुसार शकुंतला के आरंभिक तरुण सौंदर्य ने मंगलमय परम परिणत सफलता लाभ करके मर्त्य को स्वर्ग के समान सम्मिलित कर दिया है। गणदांश ने कहा है कि यह नाट्य देवताओं के नेत्रों का प्रसादन करने वाला यज्ञ है। स्वयं शिव जी ने उमा से विवाह करके अपने शरीर में इसके अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, एक तांडव और दूसरा लास्य। इनमें सत्व, रज और तीनों गुण भी दिखाई पड़ते हैं और अनेक रसों में लोक चरित्र लक्षित होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न रुचि वालों के लिए प्रायः नाटक ही एक ऐसा उत्सव है जिसको सबको समान आनंद मिलता है। श्लोक: देवा नाम मिद मामिनन्ति मुनयः शांतम क्रतु चाक्षुषम रौद्रेण त दुमा कृत व्यति करे स्वांगी विभक्तम द्विधा त्रिगुण्योद्भव मत्र लोकचरितम नाना रसम दृश्यते नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधा पेकम समाराधकम। हेडिंग: अभिज्ञान शाकुंतल का उत्कर्ष। कालिदास का काव्य सरस्वती का सर्वोत्कृष्ट प्रसाद अभिज्ञान शाकुंतल है। सौंदर्य की मादकता, प्रेम की निश्चलता, प्रकृति जन सरलता, ऋषि कुल की उदारता, महर्षि कर्ण तथा महर्षि कर्ण का आदर्श वात्सल्य, दुर्वासा का निर्मम दंड, वासना का प्राक्षलन, आत्मा का निर्मलीकरण तथा संस्कृति के पीयूष सम्मिलन, श्रेयस एवं प्रेयस मनोग्राही ग्रंथिवत, इन सभी उपदानों को एक साथ मिश्रित कर कईवर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में जो प्रपाणक रस तैयार किया है वह भारतीय जीवन के निमित्त नितांत मूल्यवान है। इस नाटक के प्रथम 4 अंकों को भोग भूमि, 5 एवं 6 2 अंकों को दंड भूमि और अंतिम सप्तम अंक को सिद्ध भूमि माना गया है। इस प्रकार यह नाटक कवि की प्रतिभा का अनुपम फल है। अभिज्ञान शाकुंतल में कवि की निपुण कला भारतीय संस्कृति के सौरभ में सनकर अधिक अभिराम तथा प्रभव विष्णु बन गई है। महाभारत की चालां तथा बिना शील वाली युवती शकुंतला नाटक में लजीली सम्मानपूर्ण करुणोत्पादक नायिका में रूपांतरित हो गई है। इसी प्रकार स्वार्थपरायण राजा दुष्यंत, जो महाभारत में नीति के अनुरोध से उसे न पहचानने का व्याज करता है, वहीं यहाँ नाटक में ऐसी विस्मृति से अभिभूत चित्रित किया गया है जिसके लिए उसकी भर्त्सना नहीं की जा सकती। उसका नैतिक चरित्र ऊंचा उठ गया है और वह पराय स्त्री संपर्क से विमुख एक आदर्श राजा बन गया है। अपनी काव्यात्मक प्रतिभा के सहारे कालिदास को दो रूपों सफलता मिली है। प्रथमतः वे काव्योचित भावों के धनी हैं जिन्हें वे बड़ी निपुणता से चरित्र के साथ मिला देते हैं, तथा द्वितीयतः उनमें संथम एवं संतुलन की काव्यात्मक भावना है जो किसी नाटककार के लिए सफलता की आवश्यक हेतु है। विद्वानों का कथन है कि कालिदास ने अपने नाटकों में नाट्य शास्त्रों के विधानों का प्रायः अनुसरण किया है। उनकी रचनाओं में अधिकांश नियमों का प्रतिबिंब झलकता है। यद्यपि कालिदास ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, 1 मालविकाग्निमित्र, 2 विक्रमोर्वशीय तथा 3 अभिज्ञान शाकुंतल, किंतु नाटककार के रूप में उनकी कीर्ति सर्वांग सुंदर अभिज्ञान शाकुंतल से स्थिर हो सकी है। समालोचकों ने चरित्र चित्रण, रस परिपाक, भाषा सौष्ठव, संविधान के चातुर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतल को संस्कृत नाटकों में सर्वश्रेष्ठ माना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर विलियम जोन्स ने एक संस्कृत के पंडित की सहायता से 1786 ईस्वी में अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसने यूरोपीय विद्वानों की मनोदृष्टि भारतीय नाट्य प्रतिभा की प्रतीति से चकित एवं मुग्ध कर दिया। उसके अनंतर कई यूरोपीय भाषाओं में उसके अनुवाद भी हुए। इस समय तो विश्व की कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जिसमें अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का अनुवाद न हुआ हो। इस नाटक के सप्तम अंक में सर्वदमन का अकृत्रिम हास्य, तोतली बोली का वर्णन तथा शेर के बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा पढ़कर शेजी नाम के एक फ्रेंच विद्वान को इतना आनंद आया कि वह नाचने लगा। विश्वविख्यात जर्मन कवि गेटे ने इस नाटक का अनुवाद पढ़कर आनंद विभोर होकर कहा कि यदि स्वर्ग और पृथ्वी की बातें एक जगह देखना हो तो अभिज्ञान शाकुंतल का अध्ययन करो। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतल को लोकप्रिय होने कारण समीक्षकों का यह कहना सर्वथा संगत प्रतीत होता है कि कालिदास के ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतल सर्वोत्कृष्ट है। संस्कृत कालिदासस्य सर्वसोमभिज्ञान शाकुंतलम। हिंदी अनंत कथा रत्नों के सागर महाभारत के आधार पर कालिदास ने इस नाटक की रचना की है। कालिदास के अनुपम रचना कौशल से यह नाटक लोकोत्तर बन गया है। इस नाटक की भाषा अत्यंत प्रसाद युक्त और रमणीय है। इसमें उपमालंकार, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अर्थांतरन्यास, काव्यलिंग आदि अलंकारों की बहुलता है। इसमें कहीं भी क्लिष्टता, कल्पना की खींचातानी, दुरान्वय आदि दोष नहीं है। प्रत्येक पात्र के अनुरूप भाषा रखने में कवि ने पर्याप्त सावधानी रखी है। शकुंतला तथा उसकी सखियां हमेशा लता वृक्ष आदिकों के सहवास में खेलने और रहने वाली हैं, इसलिए उनकी उक्तियों में आम्र, अति मुक्तलता, नवमल्लिका आदि वृक्ष एवं लता का उल्लेख है। संस्कृत क इदानीम सहकार मन्ते रणाति मुक्तलताम पल्लवीताम सहते को नामोष्णोदकन नवमल्लिकाम सिंचते। हिंदी महर्षि कण्व हमेशा यज्ञ याग से निरत और अध्याध्यापन में निमग्न रहते हैं, अतः वे ऐसे दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं जिनका संबंध यज्ञ एवं अध्ययन से है। संस्कृत दृष्टया धूमा कुलिर्ति दृष्टे यजमानस्य पावके एवाहुति है पतिता वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोच निया संवृता। हिंदी हमेशा खाद्य लोलुप और विनोदी विदूषक के स्वभाव का प्रतिबिंब उसके कथन में पड़ा है। संस्कृत यथा कस्यापि पिंड खजूरेर दुजेत्यस्य तिंतिम्यां भिलाशो भवेत तथैव स्त्री रत्न परिभोगिणो भवत इयमर्थ्यना। हिंदी किसी पात्र के भाषण में छोटे छोटे चटकीले होने से उनको पढ़ते हुए पाठक के मन प्रसन्न हो जाता है। हेडिंग तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अभिज्ञान शाकुंतल की विशेषता में समालोचकों का कहना है कि संस्कृत के काव्यों में नाटकों की उत्तमता है। उन सबों में अभिज्ञान शाकुंतल अत्यंत रमणीय है। उसमें उसका चतुर्थ अंक अत्युत्तम है। उसमें भी 4 श्लोक आदर्शपूर्ण है। श्लोक काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्रापि च शकुंतला तत्रापि अंगस्तुरियस्तु तत्र श्लोक चतुष्टयम्। ये 4 श्लोक इस प्रकार हैं। 1 श्लोक यास्य तद्य शकुंतलेति हृदयम् संस्पृष्टमत्कंठया कंठस्तम्भितवाष्प वृत्तिकलुषिश्चिन्ता जाडम् दर्शनम् वैक्लव्यम् मम तावदृशमिदम् स्नेहादरण्योकसः पिड्यन्ते गृहिणः कथम् नु तनया विश्लेष दुखे नर्वे। चतुर्थ अंक दूसरा श्लोक। श्लोक दूसरा पातुम न प्रथमम व्यवस्थति जलम युष्मा थे सुया नादत्ते प्रीमंडानापि भवताम स्नेह या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूत समये यस्या भवत्युत्सवः सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे नुज्ञायताम। चतुर्थ अंक अठवां श्लोक। श्लोक तीन। अस्मान् साधु विचिन्त्य संयमधानुनुच्चे कुलम चात्मना त्वयस्या कथमप्या बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमीयम दारेषु तद्दृश्या त्वया भाग्यायम तम मतः परम न खलु वाच्यम बंधु बंधुभि। चतुर्थ अंक सोलहवां श्लोक। श्लोक चार। सुश्रश्व गुरुन कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तु विप्रकृतापि रोषणतया माँ इस्म प्रतिमम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वनुत्सेकिनी यान्तेव गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधय। चतुर्थ अंक सत्रहवां श्लोक हिंदी। कुछ लोग चार श्लोक इस प्रकार मानते हैं। नंबर एक, यास्यद्य शकुंतला चतुर्थ पंचम। दूसरा, अस्मान साधु विचित्र चतुर्थ सोलह। नंबर तीन, सुश्रुष्व गुरुन चतुर्थ सत्रह। चौथा, अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्य स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृतेस्य प्रतिक्षण माकुला तनय मचिरान प्राचीरवाक प्रसूच पावनम ममिरजाम चनवत्से शुचम गणयासी। चतुर्थ श्लोक अठारवां, चतुर्थ अंक अठारवां श्लोक अथवा श्लोक। भूत्वा चिराय चतुरंत मही सपत्नी दौश्यंत मपतिरथम तनयम निवेश भर्त्रा तदर्पि कुटुंबहरिण सार्धम शांते करिशशि पदम पुनराशमे अस्मिन्। चतुर्थ अंक उन्नीसवां श्लोक।